शिव बाबा जब आते हैं इस भारत में मुकर्रर रथ में प्रत्यक्ष होते हैं, है देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए, तो कौन से धर्म वाले पहले सरेंडर होते हैं? इस्लामी, इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा कौन है? कहते राम के चार भाई, कुमार का तो लड़की है, धर्म पिताएं तो लड़का होते, धर्म पिता नाम है तो पिता कैसे बनेगा, लड़की कैसे पिता बन जाएगा? अरे कुमार का नहीं, उसका भी कोई बीज है, तो इस्लाम धर्म पहले सरेंडर होता है, उसकी बीज रूप आत्मा कौन है? भरत, भरत नाम दे दिया। क्यों? भरत का अर्थ क्या होता है? भरत का अर्थ है विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत होई। तो क्या वो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा या इस्लाम धर्म सारे विश्व का भरण पोषण करता है? तो क्यों ना रख दिया? हा? अब भरत नाम क्यों रख दिया? भारत नाम रख दिया। हा, जो विश्व का पिता बनने वाला है इस सृष्टि में, वो भी तो सारा विश्व हो गया ना, विश्व पिता को विश्व नहीं गिनेंगे, उसे सारा विश्व समाया हुआ है, तो उसका वर्ण पोषण करता है, तो नाम रख दिया भरत। और भगवान का जो रूप दिखाते हैं, जिस नाम रूप का शिव के साथ संयोग किया जाता है, शिव के साथ कौन सा नाम जोड़ा जाता है? शंकर नाम जोड़ा जाता है, और तो कोई दुनिया में नाम जोड़ा ही नहीं जाता, न कोई इस्लाम धर्म का फॉलोअर है, न कोई बौद्ध धर्म का, न क्रिश्चियन धर्म का, न कोई मनुष्य, न कोई देवता, न कोई राक्षस, किसी का नाम 33 करोड़ देवताओं में से किसी का नाम नहीं जोड़ा जाता, शंकर का नाम जोड़ा जाता है, क्योंकि शंकर साकार, भगवान का साकार रूप हुआ या निराकार रूप हुआ है? सुनाने के लिए, ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए, और योग करने के लिए आंख चाहिए कम से कम। क्या योग माने? लगाव लगन, तो लगाव लगन तो तभी होता है जब संग हो, बिना संग के रंग कैसे लगेगा? तो इंद्रियां माने रथ तो चाहिए ना, शरीर तो चाहिए, और शरीर में सबसे श्रेष्ठ होती है इंद्रियां। तो योग सिखाने के लिए कम से कम आंख तो जरूर चाहिए। आंखों में भी दो तरह की आंख है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो है कौन सी आंख स्थापना करेगी, कौन सी आंख विनाश करेगी? राइट यस अच्छा काम करता है, और लेफ्टिस्ट खराब काम करता है। तो जो राइट यस आंख है शिव बाप की, दो आंखें हैं ना शिव बाप को भी, राम और कृष्ण, तो वो राम के मुकर रथ में प्रवेश करके शिव निराकार साकार बनता है, है? ज्ञान देने के लिए भी और योग भी सिखाने के लिए। तो जिस साकार तन के द्वारा वो संसार में प्रत्यक्ष होता है तो उसका मुख्य काम क्या है? उस साकार तन के द्वारा क्या मुख्य काम है? विनाश। मुख्य काम तो विनाश है ना, है? तो क्यों भाई? अच्छा काम तो स्थापना का है ना, और स्थापना राइडिया से होती है, हुँ? तो विनाश क्यों? क्योंकि विनाश जब तक नहीं होगा, हुँ? पुरानेपन का, पुरानी दुनिया का, तब तक नई दुनिया प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकती। नई दुनिया की स्थापना प्रत्यक्ष ही नहीं होगी। तो शंकर कहा जाता है विनाशकारी, लेकिन रिजल्ट में विनाशकारी हुआ है या स्थापनाकारी हुआ? क्या हुआ? स्थापनाकारी हुआ। तो वो शिव भगवान का जो साकार स्वरूप है वो जब विनाश करता है तो कौन सा बाजा बजाता है? क्योंकि ज्ञान के बाजे कहे जाते हैं ना, तो पहला बाजा कौन सा बजाता है? डमरू। और कान में लटका के बजाता है कि नाक में लटका के बजाता है कि हाथ में लेके बजाता है? हाथ में लेके बजाता है। चलो, तो वो हाथ में लेके जो डमरू बजाया ना 76 में एडवांस पार्टी है, 76 में ब्राह्मणों की नई दुनिया शुरू होती है ना, तो पहला डमरू बजाया। तो वो डमरू का हेडिंग है शिव शंकर का डमरू, डम डम बोले अगम निगम के भेद खोजे। ये सभी ब्रह्मावत्स जानते ही हैं कि अव्वल नंबर के ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। ये अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन है? ये तो सुना कि पंचमुखी ब्रह्मा होते हैं, चौमुखी ब्रह्मा होते हैं, चार मुखों वाले। ये अव्वल नंबर किसको रखे है? और वह 1977 में पूरी होने जा रही है। ब्रह्मा की आयु पूरी होने जा रही, 100 वर्ष आयु पूरी होने जा रही। ब्रह्मा साकार शरीर का नाम है कि निराकार का नाम? अम्मा। अम्मा साकारी या निराकारी? साकारी। तो साकार शरीर में जब प्रवेश किया था अव्वल नंबर में तब 60 साल थी आयु, और फिर 76-77 में कितनी साल होती है? 100 साल आयु पूरी होती है। तो 1977 में वो 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की पूरी होने जा रही है। अव्यक्त बाबा ने 21 जनवरी 1979 को कहा था, आप सोचते होंगे, लोग पूछेंगे कि आपका ब्रह्मा बाबा 100 वर्ष से पहले ही चला गया। डॉट डॉट, ब्रह्मा अगर स्थूल शरीर से गया तो जो ये 100 वर्ष कहे हुए हैं वो गलत नहीं है। जो समय रहा हुआ है वो सूक्ष्माकार अव्यक्त शरीर द्वारा पूरा करेंगे है। कब बोला? 21 जनवरी को पहली अव्यक्त वाणी ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर धारण किया, तो गुलजार दादी के बोला द्वारा बोला था 1969 में है के जो समय रहा हुआ है 33 साल पूरा किया ना, तो 33 साल पूरा हुआ तो अभी 7 साल और बचा हुआ है। 33 साल प्रवेश करने के बाद है ना, क्योंकि जब प्रवेश किया तो 7 साल, उसमें 33 साल जोड़े तो 93 साल आया, तो 7 साल बचे ना। तो जो समय रहा हुआ है वो अव्यक्त शरीर द्वारा पूरा करेंगे। तो ब्रह्मा के 100 वर्ष तो पूरे हो नहीं है, ये बात ज्ञान मत पत्रिका में मासिक 4वां वर्ष अंक 11 पृष्ठ 28 पर छपी हुई है। अभी लगभग 2 करोड़ आत्माओं ने संदेश को ग्रहण किया है, है? 73 में मेला हुआ था ना, तो मेला के बाद जो मैगजीन छपी है तो उसमें कहा था कि 2 करोड़ आत्माओं को संदेश लगभग मिल चुका। चलो लगभग होता रहे, तो 73 के बाद 74 में मेले हुए, 75 में मेले हुए, 76 में मेले हुए, तो 2 करोड़ तो हो ही गया और लगभग पूरा हो गया कि नहीं, संदेश ग्रहण किया है। वर्तमान साधनों का उपयोग करते हुए विश्व की शेष आत्माओं को संदेश संगम युग के थोड़े से रहे हुए समय में किस प्रकार दिया जा सकता है, और जबकि अभी तक तमाम आत्माओं को ईश्वरीय संदेश नहीं मिला है, ब्रह्मा बाबा और शिव आप भी परम धाम कैसे जा सकते हैं? इतनी करोड़ आत्माओं को संदेश देने का कार्य हम सब आत्माओं की सम्मिलित शक्ति से किस प्रकार संपन्न हो सकता है? अवश्य ही सर्वशक्तिवान परमपिता शिव और महान आत्मा ब्रह्मा की संकरण शक्ति से ही माना दोनों आत्माओं के डबल इंजन प्राप्त होने पर ये कार्य संपन्न हो सकता है। अब शिव बाप और ब्रह्मा बाबा किस प्रकार साकार रूप धारण कर ये कार्य पूरा करने जा रहे हैं, इस रहस्य से परिचित होकर तमाम ब्रह्मा वत्सों में तीव्र पुरुषार्थ के लिए नया उमंग उत्साह पैदा हो रहा है। ১৯৬৬ की वाणी में ईश्वरीय घोषणा की अवधि दी गई थी, 10 वर्षों में सत्य की शिष्टाचारी भारत की स्थापना हो जाएगी। वो स्थापना भी 1976 में पूरी होने जा रही है ना। बाबा ने सन 1967 में कहा था, अपनी तो प्रैक्टिकल बात है ना, भारत में 9 वर्ष के अंदर सत्युग 100% सुख शांति पवित्रता का राज स्थापन हो जाना है। तुम कहते हो 9 वर्ष के बाद विश्व विनाश होगा, यह कोई उनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, है? कि कौन मरेंगे और कौन जिएंगे, इनकी बुद्धि में नहीं बैठता है, न दुनिया वालों की बुद्धि में बैठता है और न जो ब्रह्मा बाबा के पक्के भगत हैं उनकी बुद्धि में भी नहीं बैठता है। कि 76 के बाद कौन जिएंगे कौन मरेंगे, जिम बेटर है नहीं है? जब खंड खंड हो जाएंगे वह क्या यह किसको पता थोड़े ही है ना। साइंस घमंडी समझते हैं ये तो अपने ही कुल का विनाश करने के लिए बनाया है, एटम बम वगैरह ये तो डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, परंतु ऐसे थोड़े ही हो सकता है। पद्मों रुपया खर्च करके फिर कैसे डुबो देंगे? बाप कहते हैं ये मिसाइल्स वही मिसाइल्स हैं जो 5000 वर्ष पहले भी हुए थे, है महाभारत में आया ना कि 5000 साल पहले चतुर्थ विश्व युद्ध हुआ था महामारी महाभारत युद्ध के बाद, और उसमें जो यादव थे उन्होंने मिसाइल्स बनाए थे जिनका नाम मूसल रख दिया। वास्तव में वो बुद्ध रूपी पेट से निकले हुए मिसाइल्स ऐसे भयंकर थे कि उन्होंने सारी दुनिया का विनाश कर दिया और यादव कुल का भी विनाश हो गया। तो बाबा ने मुरली में बोला था है, ब्लड से हम लिख कर देते हैं कि 9 वर्ष के अंदर विश्व में शांति स्थापन करके दिखाएंगे है। तो मुरली है 1968 जब बाबा जीवित थे, भ्रष्टाचार तो ब्लड से लिखकर जो देते हैं वो किस आधार पर, कौन से निश्चय के आधार पर बोलते हैं है कि 9 वर्ष के अंदर विश्व में शांति स्थापन करके दिखा गए है। बाप कहते हैं मैं आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की छोटी सी फैमिली प्लानिंग बनाता हूं, देवी देवता सनातन धर्म स्थापन होगा तो पहले थोड़े होंगे कि ज्यादा होंगे है, थोड़े से थोड़े कितने होंगे? बोला 9 वर्ष के अंदर 9,00,000 आबादी हो जाएगी, बाकी सभी शरीर छोड़ मुक्ति धाम चले जाएंगे। तो कहां की बात हुई, बाहरी दुनिया की बात थोड़ी ही है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो 2 करोड़ आत्माएं ज्ञान में निकली हैं, बाप का बच्चा बनी जिंदा हुई, उनमें से सिर्फ 9,00,000 आत्माएं ऐसी हैं जिनको उन बातों पर बहुत विचार करने के बाद यही निष्कर्ष निकलता है कि ये जो ब्राह्मणों के द्वारा जो काम चल रहा है 1976 तक ब्राह्मणों की दुनिया में, वो काम पक्के ब्राह्मणों के द्वारा नहीं चल रहा है। इसलिए वो उस दुनिया के ऊपर उनको विश्वास उठ चुका था और उनके अंदर ये बात बैठ गई कि इन्हीं ब्राह्मणों के अंदर जो पक्के पक्के होंगे बाबा की वाणी के ऊपर, मुख वंशावली ब्राह्मण बाबा की मुख की निकली वाणी के ऊपर विश्वास करने वाले होंगे, वो ही इस दुनिया से अनिश्चय पैदा करके मरते हैं क्या, और नई दुनिया जो स्थापन होती है वहां जन्म लेते हैं। तो कौन सी नई दुनिया स्थापन होती है? तो ब्राह्मणों की सूर्यवंशी दुनिया स्थापन होती है, उसमें जन्म लेते हैं। तो सूर्यवंशी दुनिया में सूर्य तो होना चाहिए है नहीं। हाँ तो वो ही सूर्य के लिए बताया कि 9 वर्ष के अंदर विश्व में शांति स्थापन हो जाएगी। अपना पहले तो बीज चाहिए ना, तो बीज एक होगा कि अनेक होंगे? एक बीज के अंदर ये बात क्लियर हो जाती है कि ये पुरानी दुनिया ब्राह्मणों की विनाश हुई और अब नई दुनिया का सूत्रपात होना है। तो छोटी सी प्लानिंग बनाता हूं, नए धर्म वृक्ष की स्थापना करने के लिए कितना छोटा चाहिए? एक चाहिए बीज। तो 9 वर्ष के अंदर 9 लाख आबादी हो जाएगी, बाकी सभी शरीर छोड़ मुक्ति धाम चले जाएंगे। माने ब्राह्मणों की दुनिया से जो 9 कुरियों में से कमजोर कुरियों वाले ब्राह्मण हैं, उनके ऊपर से विश्वास हटा लेंगे। तो जरूर एक जगह शरीर छोड़ेंगे तो दूसरी जगह जन्म लेंगे, नंबर बार तो आएंगे ही, एकदम तो नहीं आएंगे। तो 12, 11, 69 की ये बात बोली। 7 वर्ष के अंदर वन रिलीजन, वन डीटी, डीटी किंगडम, वन पवित्रता सुख शांति का वन राज्य स्थापन हो रहा है। तो 69 और 7 69 प्लस 7 76 है। तो 76 में विश्व का जो बीज है उसकी बुद्धि में क्लियर सुख शांति का राज्य स्थापन होता है। 11, 9, 69 पृष्ठ 4 का मध्यांत की रिवाइज मुरली है ये, जो 69 में चली है। षष्ठी का फाइनल विनाश 6 वर्ष में, जो 7 वर्ष कहेंगे तो पद कम हो जाएगा, पद कम हो जाएगा माना सूर्यवंशी में जन्म नहीं लेंगे। उसके बाद जो दूसरे नारायण आते हैं, इस्लाम धर्म के आधार, बौद्ध धर्म के आधार, क्रिश्चियन धर्म के आधार, उन धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो पद कम हो गया ना, विनाश कब होना है? जो 7 वर्ष कहते तो पद कम हो जाएगा, बाकी 2 वर्ष हैं। फिर बोला 74 में है, रिवाइज की मुरली है, उसमें भी बोला बाकी 2 वर्ष हैं, ऐसे मत समझना 3 वर्ष हो जाएंगे। 1 वर्ष होगा परंतु 3 नहीं होंगे। माना 75 हो सकता है लेकिन 3 वर्ष नहीं होंगे। वो तो इशारा दे दिया था, घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे और अब भी हो रहे हैं। माना 73 में जो रामलीला ग्राउंड दिल्ली में मेला हुआ था, उसके बाद वो काम उनका शुरू हो गया। अभी तक सिर्फ सतयुग में नंबर वार आने वाली 2 करोड़ आत्माओं को संदेश दिया जा चुका। और शिव भोला भगवान वाच है, सतयुग अंत में वृद्धि होकर 9 लाख से 2 करोड़ हो गए होंगे। इसका मतलब ये है कि 9 लाख में सिर्फ सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी आत्माएं भी ऐड हो जाएंगी है? अगर ऐड नहीं होंगी तो प्रवृत्ति भाग नहीं बनेगा। प्रवृत्ति मार्ग बनने के लिए तो जरूरी है कि दो वंश श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलकर के एक हो जाए। तो 4.5 लाख सूर्यवंशी आत्मा है जिन्हें रुद्रमाला कहा जाता है और 4.5 लाख चंद्रवंशी आत्मा जिन्हें कहा जाता है ठंडे दिमाग की। हिमालय पर्वत की पैदाइश है ना, तो ठंडे दिमाग की, और वो ऐड हो जाती है कहा, वही रुद्रमाला के पक्के सूर्यवंशी में। तो शिव भगवान वाच है, साबित हो गया कि 9 लाख से शुरुआत होती है, है? उनमें पुरुषार्थ करने वाले कितने होंगे? 9 लाख होंगे कि प्रजा होगी जी, ढेर सारी प्रजा होती है पुरुषार्थ करने वाले, तो थोड़े ही होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कितने है? फर्स्ट क्लास माला बनती है जो पांचवे दानर होते हैं वो 8, फिर फर्स्ट क्लास 108, फिर सेकंड क्लास 1008, फिर थर्ड क्लास 16108। तो ये कंट्रोलर हो गए, राजयोग सीखने वाले जो राजा ही पाते हैं। राजघराने में कम से कम जन्म तो लेते हैं ना, तो 2 करोड़ आत्माएं सतयुग के अंत में होंगी कि सतयुग की पहली पीढ़ी में होंगी? है कब होंगी? अंत में हो, पहली पीढ़ी में। तो पहली पीढ़ी जब से शुरू होगी तब से लेकर जब तक पीढ़ी अंत होगा तब तक 9 लाख ही हो पाएंगे, और उसके बाद जो आत्माएं आएंगी वो नीची कुरियों वाली आएंगी। तो बताया संक्षेत्र तक, तो 2 करोड़ आत्माओं को संदेश मिला जो तो प्रजा बनने वाली आत्माएं हैं, बाकी 31 करोड़ आत्माओं को तो संदेश देने का कार्य है पूरा होगा या नहीं होगा? पूरा होकर ब्रह्मा बाबा परम धाम जा सकते हैं, वाह साकार श्री कृष्ण के रूप में जन्म ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 33 करोड़ देवताओं देवता धर्म की स्थापना होनी है ना, ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना, तो साकार शरीर के द्वारा है या सूक्ष्म शरीर के द्वारा? साकार शरीर के द्वारा ना, तो जरूर कोई साकार तन में प्रवेश करना पड़े, तो साकार तन में ब्रह्मा की आत्मा दादा लेखराज की प्रवेश करके 76 से, बल्कि पहले से ही 1-2 साल ये कार्य शुरू कर देती है। ब्रह्मा बाबा का सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु रूप में परिवर्तित होता जा रहा है। कैसे? कि 69 में 18 जनवरी को जब आना शुरू किया था तो आवाज से बोलते थे फिर भी धीरे धीरे, है, और बाद में फिर धीरे धीरे आवाज खत्म होने लगी। तो सूक्ष्म शरीर भी जब खत्म होगा तो बीज रूप स्टेज पकड़ेंगे, और जब बीज रूप स्टेज पकड़ेंगे तो फिर आवाज खत्म, और अव्यक्त पार्टी भी समाप्त प्राय होता जा रहा है। शिव बाप तो है ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, वो तो उसका तो अपना शरीर ही नहीं है, इसलिए उसको मुकर्र रथ में प्रवेश करना पड़ता है। अब ब्रह्मा बाबा और शिव बाप एक समान बिंदु रूप हो जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएंगे कि टाइम लगेगा? है, टाइम लगेगा। तो वो टाइम भी बता ही दिया। क्या तुम बच्चों को क्या तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने में 40 साल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 50 साल। अब ब्रह्मा बाबा और शिव बाप ये दोनों ही आत्माएं पुरुषोत्तम संगम हुई ब्राह्मण परिवार के किसी एक अत्यंत योग युक्त ब्रह्मा वत्स जो कि अभी गुप्त पुरुषार्थी है के तन में पूर्णतः प्रवेश करने जा रहे हैं। उस आत्मा के मरीवा जन्म का नाम शंकर प्रसिद्ध होगा क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण पक्कों की स्थापना होने के बाद है कौन सी मूर्ति का पाठ शुरू होना शंकर द्वारा विनाश। तो ब्राह्मण की दुनिया में जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं भारत का नाम बदनाम करने वाले हैं उनका विनाश क्योंकि वही राम वाली आत्मा शंकर बनती है, है? वही कृष्ण वाली आत्मा दादा लेकर आए ब्रह्मा। दो ही आत्माएं तो प्रसिद्ध है ना। तो शंकर नाम प्रसिद्ध हो जाता है शंकर द्वारा विनाश कोई बाहर की दुनिया का नहीं शंकर द्वारा विनाश ब्राह्मणों की दुनिया में जो ढेर सारे अधकचरे ब्राह्मण बड़े परे हैं ना जो द्वापर युग से कन्वर्ट होते रहते हैं उन सब का खात्मा होने वाला है। बाकी जो निमित्त बनेंगे उनका देखने में आवेगा आप मुए मर गई दुनिया माने जो इस ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया से बुद्धि का कनेक्शन तोड़ लेंगे उससे मर जाएंगे तो समझा जाएगा कि दुनिया मर गई। जब त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर का चित्र है और मंदिरों में व सारे विश्व में शिव के बाद सर्वाधिक शंकर की नग्न मूर्तियां ही पाई जाती हैं, चाहे वो जैनियों के तीर्थंकर भगवान के रूप में भले हो। गायन पूजन चला आ रहा है तो अवश्य ही उन्होंने पुरुषोत्तम संगम युग पर कोई महान कार्य संपन्न किया होगा। इसीलिए तो सबसे जास्ती मंदिर शिव शंकर भोलेनाथ के भारत में है ना और विश्व में भी है और दुनिया में जहां जहां खुदाइयां हुई है वही निराकारी रूप धारण करने वाला शंकर का चित्र मूर्ति मिलती है सबसे जास्ती तादाद में। शोभा व ब्रह्मा बड़ी मां इस ब्रह्मा वत्स द्वारा संसार के सामने शक्ति के रूप में प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष होते हैं तभी भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक कर दिया और शंकर को देवताओं के बीच में देवदेव महादेव की उपाधि से विभूषित किया है। और तीन लोक के चित्र में भी शिवपुरी के बाद कौन सी पुरी दिखाई सबसे ऊपर शंकरपुरी दिखाई जो कि विष्णुपुरी से भी ऊपर है हा? और ब्रह्मापुरी से भी ऊपर है सबसे नीचे ब्रह्मापुरी फिर ऊपर विष्णुपुरी फिर ऊपर शंकरपुरी तीन पुरियों के तबके में शंकर को सबसे ऊपर के तबके में दिखाया जाना अवश्य उनके महान कर्तव्य ऊंचे से ऊंचे कर्तव्य को सूचित करता है। और ये चित्र भी है ब्रह्मा कुमारियों को जो साक्षात्कार से चित्र तैयार हुए थे उनमें झाड़ के चित्र में ये तीन लोग का चित्र कोई भी देख सकता है। तीसरा भी भला शिव ब्रह्मा शिव विष्णु को क्यों नहीं कह दिया गया, ब्रह्मा के इतने मंदिर क्यों नहीं है, है? बाबा अंत समय तक कहते रहे मैं तो पुरुषार्थी हूं, ब्रह्मा बाबा कहते रहे ना मैं संपूर्ण नहीं बना हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं, ये तो पुराना पतितन है आदि आदि बोलते रहे ना। इस समय कोई भी संपूर्ण नहीं बना है, सभी पुरुषार्थी है। ये दयादा भी कहते हैं मैं पुरुषार्थी हूं, है 6870 की वाणी का चौथा पेज, हाँ 2268 की वाणी में भी बोला है, यह कहते हैं मैं भी स्टूडेंट हूं, पढ़ाई पर अटेंशन देता, गायन पूजन तो संपूर्ण अवस्था का होता है जिससे कुछ प्राप्ति हो। शिव भगवान वाचे अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है, है? वो तो दलाल है, ब्रह्मा से कोई वर्षा थोड़ी मिलता है, ये तो दलाल हो गया। वर्षा मिलता ही है दो से, एक मनुष्य सृष्टि का बाप है और दूसरा पारलौकिक बाप। कौन हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप? जिसो मुसलमान लोग कहते हैं आदम, अंग्रेज लोग कहते हैं एडम और हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव, तो वो हुआ मनुष्य सृष्टि का बाप और दूसरा पारलौकिक बाप। इन दो से ही वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से निराकारी है तो निराकार ज्ञान का वर्षा, और मनुष्य सृष्टि के बाप से मनुष्य सृष्टि साकार है तो साकार सृष्टि में साकार स्वर्ग का वर्षा। ये मुरली है 27269 पृष्ठ 2 की, और बोला ये ब्रह्मा तो अलौकिक ठहरा ना, अरे इनको तो हम पारलौकिक बाप अथवा लौकिक बाप मिसल भी नहीं समझते हैं, क्या पारलौकिक भी नहीं समझते और इनको लौकिक भी नहीं समझते, इन दोनों से ही वर्षा मिलता है क्योंकि इनसे तो वर्षा मिलता नहीं है, वर्षा तो एक ही शिव बाबा से मिलता है। एक कैसे कहें, बिंदी 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 तो ढेर सारी आत्माएं, कैसे पता चलेगा कौन सी बिंदी, तो जरूर शिव बाबा नाम दिया है, शिव बाप नहीं, आत्माओं का बाप बिर ज्योति बिंदु, और शिव बाबा का मतलब है बाबा, ग्रैंड फादर को कहा जाता है कि शिव कहते हैं मैं जीव दूसरे तन में, जब दूसरे के तन में प्रवेश करता हूं तो मेरे अनेक संबंध बनते हैं, तो उनमें बाबा भी है ग्रैंड फादर, तो शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये तो बीच में दलाल है। 25369 पृष्ठ की मुरली पृष्ठ 2 मध्यादि, ब्रह्मा के पास तो कुछ भी नहीं है, इनका चित्र भी रखने की दरकार नहीं है। 75 की मुरली, इस ब्रह्मा के पास तो कुछ भी नहीं है, इनका चित्र रखने की दरकार ही नहीं है। 27275 की मुरली 2 पृष्ठ, अब वो ही ब्रह्मा बाबा संपूर्ण, कौन से ब्रह्मा बाबा है, संपूर्ण 100 वर्षीय चतुर्भुजी ब्रह्मा के रूप में शंकर द्वारा प्रत्यक्ष होने जा रहे हैं। कौन सा, कितने भुजी बताया है, चतुर्भुजी, तो 4 भुजाएं जो हैं, भुजाएं जड़ होती है चैतन्य होती है, जड़ होती है, तो उनको चलाने वाला 5वां मुख भी ब्रह्मा को दिखाया जाता है, उसको ऊपर की ओर मुंह करते दिखाया जाता है। और ब्रह्मा इस दुनिया में देखते हैं कहां क्या हो रहा है, जो ऊपर की ओर मुख है वो ही है सच्चा ब्राह्मण, चोटी का ब्राह्मण, जिसको कहा जाता है एक शिव बाबा दूसरा रूपाली। तो इसी संगम युगी चरित्र के प्रतीक रूप में शंकर के मस्तक पर ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का चित्रित रूप दिखाया जाता है। इसी प्रकार ज्ञान सूर्य शिव के प्रवेश चिन्ह के रूप में सदा शिव नेत्र दिखाया जाता है और ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती है दिखाई जाती है और गले में लिपटी हुई सर्प माला है, कमर में लिपटे हुए सर्प, भुजाओं में लिपटे हुए सर्प, सर पर दिखाया हुआ सर्प, पांच विकारों के सूचक हैं है? और पंच विकार धारण करने वालों को वो विश्व पिता झटक के फेंक थोड़ी देता है क्या? अरे भाई आओ बच्चे हमारे पास आओ, चिंता क्यों करते हो, तुम्हें फेंकेंगे नहीं, अपने आप भाग जाओ, वो दूसरी बात। तो वो उनके शरीर में लिपटे हुए दिखाए जाते, उनसे विकारों का युद्ध होता रहता है, विजय का भी सूचक है, है? सुलझी हुई जटाएं इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया था। शंकर को नग्न रूप में इसलिए चित्रित किया जाता है कि उन्होंने आत्मा को शरीर रूपी वस्त्र का भान से अलग कर दिया, शरीर रूपी वस्त्र का भान ही नहीं रहा तो जैसे आत्मा रह गई बिंदु निराकार, इसलिए निराकारी स्टेज दिखाई गई है। तो शरीर को ही वस्त्र कहा जाता है, तो जैसे शरीर वस्त्र है याद ही नहीं रहा तो विदेही बन गए। कलयुग की तमगुड़ी संसार में पूर्णतया वैराग कर लेने के कारण ही उनको वन में तपस्या करते हुए चित्रित किया जाता है, है? कहाँ तपस्या करते हुए? जंगल में। जंगल का मतलब क्या है? ये सारा संसार कलयुग के अंत में कांटों का जंगल ही तो बन जाता है, है? कांटे क्या करते हैं? दुख देते हैं, काहे कर्म इंद्रियों से दुख देते हैं, वाचा से दुख देते हैं, मनसा के संकल्पों से दुख देते हैं, तो जंगल हुआ ना। भक्ति मार्ग में शंकर को अर्धनारीश्वर के रूप में चित्रांकित किया जाता है, आधा भाग नर और आधा भाग नारी का। तो ये तो ब्रह्मा भक्ति जानते ही है चौथा पेज कि संगम युग में विचित्र निराकार शिव शंकर वह हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के चित्र का ये गायन पूजन भक्ति मार्ग में चलता है। अतः अर्धनारीश्वर के चरित्र का प्रैक्टिकल पार्ट अब जल्दी ही प्रत्यक्ष होने जा रहा है, माना कोई 100-200 साल नहीं लगेंगे, 1000 साल नहीं लगेंगे। ब्रह्मा अब सब ब्रह्मा वत्सों की बड़ी माँ है, है? और सारी दुनिया को ब्रह्मा की औलाद बनना है, ब्रह्मा से ही दुनिया पैदा हुई है? और शिव बाबा की स्त्री है कौन? ब्रह्मा। शिव बाप की स्त्री नहीं, किसकी स्त्री? शिव बाबा की। तो शिव बाबा हो गया साजन है, हम सब उसकी सजनिया है। स्पष्ट है शिव बाबा पुरुष प्राणेश्वर है। अब ब्रह्मा माँ और शिव बाप स्वरूप परम पुरुष दोनों के संयुक्त रूप शंकर के साधातन में दिव्य प्रवेश करके स्वर की स्थापना का कार्य कर रहे हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में अर्धनारीश्वर के रूप में शंकर का गायन पूजन चला आ रहा है, क्योंकि उसमें नारी भी है बड़ी अम्मा के रूप में और पुरुष भी है, क्या करूं, पुरुष भी है, पुरुष तो बाप होता है और अम्मा, अम्मा तो स्त्री होती है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अर्धनारीश्वर दिखाते हैं भक्ति मार्ग। परमपिता शिव की मात पिता के रूप में की गई महिमा शंकर के इसी संपूर्ण स्वरूप अर्धनारीश्वर की महिमा है, जिसकी पूजा भी की जाती है। और ये सभी ब्रह्मा वत्सों को ज्ञात ही है कि ईश्वरीय ज्ञान की अधिष्ठात्री मातेश्वरी सरस्वती जी ने सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करके 24 जून 1965 को देह त्याग किया था। उस समय संदेशियों द्वारा बाबा ने कहा था कि ईश्वरीय सेवा में तीव्र गति लाने के लिए ही मम्मा गई है। क्या? इसके बाद समय समय पर संदेश पुत्रियों को मम्मा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के साथ साथ दिखाई पड़ती थी। इससे स्पष्ट है कि मम्मा ने कहीं जन्म नहीं लिया है, बल्कि सूक्ष्म शरीर द्वारा बच्चों की सूक्ष्म सेवा कर रही है। इस प्रकार ब्रह्मा बाबा से 3-4 वर्ष पूर्व सूक्ष्म शरीर धारण करके किसी श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी के तन में प्रवेश करके, क्या भ्रष्ट ब्रह्मा कुमारी के तन में नहीं, ऐसी ब्राह्मण के तन में नहीं जो दूसरे धर्म में जाके कन्वर्ट हो जाए, है? या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली ब्रह्मा कुमारियों के तन में नहीं, श्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी के तन में प्रवेश करके पाठ बजाने के कारण भक्ति मार्ग में राधे को कृष्ण से बड़ी आयु का दिखाया जाता है। 3-4 साल बड़ी थी राधा, क्या मतलब हुआ है? है? हाँ, के जो राधे वाली आत्मा है वो कृष्ण से बड़ी है। 66-67 में वो ज्ञान में आई, वो श्रेष्ठ ब्राह्मणी जिसमें सरस्वती ओम राधे ने प्रवेश किया, तो वो हो गई चंद्रवंशी राधे। और कृष्ण फिर 3 साल के बाद आता है, है? जो बोला है, क्या बोला? अहमदाबाद को सब सेंटर्स का बीज रूप कहेंगे।
अरे
अरे, गुजरात में तो सब स्टेट में सेंटर खुल गए, उसके बाद खुला है, तो बीज कहां से हो गया? बीज इसलिए हो गया कि विश्व की जो बीज रूप आत्मा आदम एडम अर्जुन आदि देव वाली आत्मा है, शंकर वाली आत्मा, वो उस सेंटर में आकर के समय 69 में ज्ञान लेती है। क्या? हम बाबा ने भी बोला ना कि बाप दादा का पहला मिलन निराकारी स्टेज में कब हुआ? 5 दिसंबर को। हाँ, तो 5 दिसंबर को वो आत्मा कौन सी? संगम युगी कृष्ण वाली आत्मा। दिखाते हैं ना चित्र में कि बुड्ढा बाबा शिव बाबा बैठा हुआ है, दाढ़ी मूछ वाला बुड्ढा है ना, दिखाया। और उसकी गोद में कौन बैठा? कृष्ण बच्चा बैठा हुआ। वो कौन सी? सत्यु का बच्चा नहीं है जो दाढ़ी मूछ वाले की गोद में बैठा हो, वहां तो सब क्लीन सेव देवताएं होते। ये संगम युग किया, संगम युग की यादगार है। तो समझा कि कृष्ण से राधा 2-3 साल बड़ी दिखाई जाती है। 1976 के पश्चात फुल कास्ट ब्रह्मावत शंकर और पार्वती बनाम चतुर्भुजी ब्रह्मा के रूप में प्रैक्टिकल में जगत में पिता और जगत माता का पार्ट प्ले करने जा रहे हैं। जो पक्के पक्के ब्राह्मण हैं सूर्यवंशी और पक्के पक्के जो चंद्रवंशी हैं राधा की तरह, उनकी बुद्धि में बैठेगी ये बात, और जो हाफ कास्ट ब्राह्मण है उनकी बुद्धि में ये बात बैठने वाली नहीं। इस प्रकार महातेश्वरी जी के बारे में जो ये खबर उड़ाई गई थी कि मम्मा ने नेपाल में जन्म ले लिया है, वो खबर अफवाह मात्र ही है। बड़ा संपूर्ण सूक्ष्म शरीर फरिश्ताई अवस्था को प्राप्त करने वाली कुमारी पवित्र सरस्वती जी की आत्मा विकार द्वारा जन्म कैसे ले सकती है? इस दुनिया में तो जो भी गर्भ से जन्म लेते हैं विकार से ही जन्म होते हैं। तभी भक्ति मार्ग में सरस्वती पार्वती राधा को गौरवर्ण ही दिखाया जाता है, जो गोरा वर्ण उनकी पवित्रता के पुरुषार्थ का सूचक है। तो उन्होंने काला मुंह करने का पुरुषार्थ नहीं किया जो छुप के काम किया जाता है। क्या आज की जो बेकारी संतान पैदा होती है छुप के या चौराहे पर सबको दिखा के? नहीं। तो अभी योग बल से तो किसी का जन्म नहीं हो सकता, अभी नहीं, क्योंकि योग बल अभी संसार में प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। संसार में जब प्रत्यक्ष होगा तो दुनिया की सभी आत्माएं क्या नंबरवार ज्ञान भी उठाएंगी, और नंबरवार विशेष ज्ञान योग को भी पहचानेंगी, और उस परमपिता के साकार स्वरूप के साथ योग लगाकर जीवन मुक्ति भी प्राप्त करेंगे। सभी आत्माएं माने 500-700 करोड़ जो मनुष्य आत्माएं हैं, कोई भी नहीं बचेगी जो ब्राह्मण न बने, ज्ञान और योग न सीखे। तो बताया अभी जन्म नहीं हो सकता है। ओम राधे सरस्वती का अभी जन्म की बात ही नहीं। जिसके तन में प्रवेश होके वो पार्ट बजाती है, वही पार्वती के बारे में बाबा ने कहा था कि आगे चलकर छोटी छोटी कुमारियां बड़ों बड़ों को ज्ञान के बाण मारेंगी। बाप कहते हैं इन गुरुओं को मारो गोली, कन्याओं द्वारा बाण मरवाए। मुरली तारीख 7/1/1967 पृष्ठ 3, और गाया हुआ भी है। विषय पितामह को परमपिता परमात्मा ने ब्रह्मा कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। क्या शिखंडी कन्या दिखाते हैं ना, कन्या के द्वारा भीष्म पितामह को आगे करके अर्जुन ने पीछे से बाण मारे। किसके आदेश पर? श्री कृष्ण के आदेश। तो श्री कृष्ण की श्रीमती मिली, भगवान ने बाण मरवाए। तो ये ज्ञान बाण की बात है। मुरली तारीख 20/2/72 पृष्ठ 4 पांचवा पेज। मुरली का नहीं, डमरू का पांचवा। आयु से यहां तात्पर्य लौकिक आयु से नहीं, अलौकिक मरजीवा जन्म की आयु से है। अभी तक निराकार शिव ने ब्रह्मा द्वारा मां का साकार पाठ बजाया। अभी शिव भगवान वाच है, तुम्हारी बड़ी मम्मी ब्रह्मा है, परंतु कई बच्चों ने पूरा पहचाना नहीं है कि वास्तव में ब्रह्मा है और कैसे है। अभी अजन पहचानती रहे। मुरली तारीख 1/5/73 पृष्ठ 2 का आदि ये भी बोला, जिस तन में प्रवेश करते हैं वो हो गई ज्ञान चंद्रमा माता, बाकी सभी हैं बच्चे सितारे। सभी में कितने आ गए है? अरे 9 लाख सितारे गाए जाते हैं तो वो सब आ गए, वो तो है डायरेक्ट चंद्रमा और ज्ञान सूर्य की रहबरी में पल्ले वाले सितारे, बाकी छात्र बाकी इस्लाम धर्म के भी है, है कि नहीं, वो आत्मा नहीं है, है आत्मा रूप सितारे। इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन या उनके सहयोगी धर्म के फॉलोअर्स, वो सभी बच्चे ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की ही औलाद बनते हैं, लेकिन कम कुरी के ब्राह्मण बनते हैं, कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण जो भारत का नाम बदनाम करते हैं। यही कारण है बड़ी से बड़ी भूल करने पर भी साकार ब्रह्मा ने कभी किसी बच्चे को यज्ञ रूपी गोद से किसी को निकाला नहीं। क्या भले हाफ कास्ट ब्राह्मण का पार्ट बजाय रहा है फिर भी उसको निकाला नहीं, स्वयं ही अलग हो गए बच्चे, वो अलग बात। राजनीतिक व प्राकृतिक स्थिति भी अपेक्षाकृत शांति की रही जब तक ब्रह्मा के साकार तन द्वारा पार्ट बजाया गया। अतः चैन की बंसी बजाई किसने, ब्रह्मा और फिर कृष्ण की आत्मा ने, और 36 प्रकार के व्यंजनों का भोग भी लगाया जो श्रीनाथ के मंदिर में आज भी यादगार दिखाई जाती है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ही सतयुग के प्रथम राजकुमार बनेंगे, ये आप सब लोग जानते ही हैं। अब निराकार सो साकार शिव बाबा शंकर स्वरूप से बाप धर्मराज का पार्ट बजाने जा रहे हैं और बजा भी रहे हैं, जैसा कि इस अव्यक्त महावाक्य में संकेत किया गया है। घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी भी व्यक्त तन द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, व्यक्त तन द्वारा, ये नहीं बोला अव्यक्त तन द्वारा। गुजार जाति का तन कैसा कहेंगे, व्यक्त व्यक्त माने जो आंखों से देखा जाए कि अव्यक्त, अव्यक्त तन था तो समय पर प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, काहे के लिए सामना करने के लिए। गुलजार दादी के द्वारा कभी बाबा ने 2 शब्दों से भी ब्रह्मा कुमारों का सामना किया है, और दुष्ट ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने ब्रह्मा बाबा को बोलने भी नहीं दिया, जैसे बैल के मुंह में मुसीका लगाया जाता है ऐसे मुंह बंद कर दिया बार बार, तो भी बाबा ने उनको बरखिलाफ 1 शब्द भी नहीं बोला। तो वो सामना किया क्या, सामना नहीं किया, अभी बताया सामना करने के लिए कोई और व्यक्त तन है जिसके द्वारा समय पर प्रत्यक्ष हो जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। माना जिस तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो रहे हैं उस तन के द्वारा रजिस्टर्ड पोर्ट से चिट्ठियां एडवांस ज्ञान को क्लियर करने वाली भेज दी गई थी, कहां पांडव भवन में माउंट आबू में 16/1/75 की अव्यक्तवाणी पृष्ठ 16 किताब में छपी हुई है। ओरिजिनल किताब उठाना है 75/76 की छपी हुई, ये नहीं कि बाद में इन्होंने 2 दूसरे एडिशन छपाई दिए उनमें से कट पिट कर दियो। स्पष्ट है कि यहाँ व्यक्त तन शब्द गुलजार दादी के लिए नहीं बोला है, ये शंकर वाली आत्मा त्रेता युग में प्रथम गद्दी नशीन राजा श्री राम और श्री सीता प्राप्त करते हैं। जो बोला है मुरली में कि जो जिस नंबर के नारायण बनेंगे लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। पहले नंबर के लक्ष्मी नारायण सतयुग में पहली पीढ़ी में, तो त्रेता में पहले नंबर के राम सीता, किंतु पुरुषोत्तम संगम युग में डायरेक्ट ज्ञान सूर्य के डायरेक्शन में संगम भी नर से श्री नारायण व नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। और कलयुगी भ्रष्टाचारी सृष्टि रावण राज्य को योग बल द्वारा सतयुगी श्रेष्ठाचारी सृष्टि राम राज्य में बदलने के लिए ज्ञान सेतु कहो ज्ञान फूल कहो बनाते हैं। इस बात को आगे स्पष्ट किया गया है। अतः भक्ति मार्ग में श्री राम को सूर्यवंशी कहा गया है। ये गायन भी चलता है कि श्री राम ने रावण का विनाश करने के लिए पुल बनाया था। वो ज्ञान पुल की बात है, क्या स्थूल पत्थरों की बात नहीं। स्थूल पत्थर बुद्धियों को ज्ञान जल के ऊपर तैराया तैराया था और वो ज्ञान जल के ऊपर तैरते थे। क्या सागर मंथन करना है ना, तो तैरने वाले सागर में डूब मरेंगे कि ऊपर ऊपर तैरेंगे, है विनाश भी होगा जलमयी हो जाएगी, तो क्या करेंगे वो बीज रूपात्मा तैरेंगी ऊपर ऊपर, डूबने वाली नहीं है। तो जो कुल बनाया था उससे पूर्व शिव का पूजन किया था, जिसकी यादगार दक्षिण भारत में रामेश्वरम राम का ईश्वर शिवलिंग का मंदिर बना हुआ, शिव ज्योति बिंदु। शंकर के द्वारा ही संसार के सामने ज्ञान सूर्य बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष होता है या पहचाने जाते हैं। और लिंग का अर्थ ही है छठा पेट, क्या अर्थ है अब तो चल गया, अब हड़कंप पैदा न करो। प्रैक्टिकल परम पुरुष का चिन्ह पहचान हो, यह वर्ष 1976 बाप की प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। क्या इससे पूर्व बाप को प्रत्यक्ष नहीं किया गया था? जो ये वर्ष 1976 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इससे सिद्ध होता है कि वस्तुतः अभी तक हमने माँ अंग्रेजों की ईव और मुसलमानों की हवा बीबी को प्रत्यक्ष किया है। बाप शंकर एडम आदम को अब तक प्रत्यक्ष नहीं किया है, होना है। पुरुषार्थ अनुसार नंबर वार ब्रह्मावत से ही बाप को प्रत्यक्ष कर पाएंगे या पहचान पाएंगे। यहाँ ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि बाबा अक्सर जो ये कहा करते थे कि शंकर का तो इस मनुष्य सृष्टि पर कोई पार्टी नहीं है, वो तो सूक्ष्म वतन में शिव की याद में बैठा हुआ है। शंकर का तो कोई पार्ट नहीं है। मुरली तारीख 23/7/67 पृष्ठ 1। इसका अर्थ ये निकालना कि साकार सृष्टि में शंकर है ही नहीं, ये उचित नहीं। पार्ट न होना कर्म इंद्रियों से वो अलग बात, और होना ये अलग बात। शंकर का जब चित्र है और मंदिरों में मूर्तियां हैं तो साकार चित्र का अस्तित्व तो है ही ना। किंतु इस मनुष्य सृष्टि पर रहते हुए भी उनकी बुद्धि इस मनुष्य सृष्टि पर न रह करके निराकारी लोक या आत्माओं के बीच बीज रूप ज्योति बिंदु शिव की ओर रहती है। वह उनके तन द्वारा कार्य होता है, जो वास्तव में शिव बाबा 21 जन्मों का वर्षा देते हैं वो कार्य होता है। और ब्रह्मा बाबा अनेक मत मतांतरों का खंडन करके एक मत स्थापन करते हैं सारे संसार की मनुष्य आत्माओं की बुद्धि में। तो ये शंकर स्वयं वो सिर्फ याद में रहते हैं, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, कहते हैं ना है? शिव बाबा क्यों कहा, उसे एक बच्चे के लिए ही मुरली में बोला, तेरी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी। इसलिए बाबा ने कहा कि शंकर का तो कोई पार्ट ही नहीं है कर्म इंद्रियों से, है बुद्धियों का पार्ट है याद करने का, या कर्म इंद्रियों से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की तरह भागदौड़ करता है, है? बुद्धि का पार्ट है आराम वाली आत्मा का। बाकी भागदौड़ करना और ये ओ मुरली पढ़ना ये कौन करता है? हाँ, ब्रह्मा की सोल पढ़ाई पढ़ रही है, वो ही किताब पढ़ती है टेक्स्ट बुक, गद्य और पद्य कहते हैं ना, पोएट्री और प्रोज, हाँ तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा पढ़ती है, पोएट्री है मुरली और प्रोज है अध्यात्मवाणी। तो शिव भगवान वाच है, शंकर द्वारा विनाश होना है, वो भी अपना कर्तव्य कर रहे हैं। जरूर शंकर भी है तब तो साक्षात्कार होता है, या तो जरूर लगा दिया। अब ब्रह्मा कुमार कुमारी की बुद्धि में क्या बैठ गया, शंकर है ही नहीं, अब हम ही शंकर, हम ही विष्णु है, तो बस बड़े बड़े पोस्टर छपा दिए दीदी दादी दादाओं ने अपने त्रिमूर्ति के रूप में दिखा दिया, ऊपर शिवलिंग दिखाया, नीचे ऊपर सबसे ऊपर कुमार का दादी, बीच में जानकी दादी और नीचे गुलजार बोई है। इसी प्रकार त्रिमूर्ति शिव के चित्र में विष्णु की व्याख्या करते हुए ब्रह्मा वत्स कहते हैं कि विष्णु की जो चार भुजाएं दिखाई गई हैं उनमें दो भुजाएं श्री नारायण की, दो भुजाएं लक्ष्मी की, ये तो युक्तियुक्त बात नहीं है। भुजा सहयोगी आत्मा का प्रतीक है, तो चार भुजाएं चार सहयोगी आत्माओं के प्रतीक हैं, जो साक्षात्कार से बनाए हुए त्रिमूर्ति के चित्र में नीचे साफ लिखा हुआ है, विष्णु के नीचे क्या लक्ष्मी नारायण और राम सीता, ये चार आत्माओं का कॉम्बिनेशन चार भुजाएं दिखाई गई। तो बाई ओर की दो भुजाएं, दाई ओर की दो भुजाएं, एक भुजा में सुदर्शन चक्र, दूसरी भुजा में गदा, श्री राधा श्री कृष्ण सरस्वती और ब्रह्म, और बाई तरफ की दो भुजा शंख और कमल, वो है सीता और श्री राम। इनके प्रतीक है साकार बाबा के समय छपे हुए त्रिमूर्ति के बड़े चित्र के नीचे स्पष्ट लिखा हुआ है, विष्णु द्वारा जीवन मुक्ति प्रारब्ध प्रदान करने के लिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण और श्री सीता श्री राम के सतयुग और त्रेता के देवताई सृष्टि की पालना होती है। इसी प्रकार 1966 में सातवां पेज 66 में मनबुद्धि द्वारा चैतन्य भारत से भ्रष्टाचार के विनाश के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने की घोषणा करते हुए मुक्ति और जीवन मुक्ति की कुंजी के चार पृष्ठों के फोल्डर में विष्णु के चित्र के नीचे विष्णु द्वारा श्री लक्ष्मी नारायण और श्री राम सीता, राम द्वारा है उनकी वंशावलियों के सत्युगी सूर्यवंशी और त्रेतायुगी चंद्रवंशी सृष्टि की पालना दिखाई गई। हमारी भारतीय संस्कृति में श्री कृष्ण और राम को समान रूप से महत्व दिया जाता है, इन दोनों में से किसी एक के बिना अखंड भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। वस्तुतः भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही है, यहाँ तक कि स्वयं शिव बाप का नाम निराकार राम नहीं, राम है तो निराकार राम, लेकिन वो यादगार है कि राम वाली आत्मा भी निराकारी स्टेज धारण करती है, इसलिए कहते हैं निराकार राम। गाते भी हैं पतित पावन सीताराम, शिव बाबा सतयुग त्रेता में जिस राजाई की स्थापना करते हैं वो राम राज्य कहा जाता है। शिव भगवान वाच सर्वशक्तिवान तो एक बाप ही है जिसको राम भी कहते हैं, मुरली 20 2.74 पृष्ठ 3 का आदि। अब राम शिव बाबा मत देते हैं निश्चय में ही विजय है। मुरली 18.12.74 पृष्ठ 2 का मध्य राम कहेंगे भगवान को, कहेंगे है अभी संगम युग में ब्राह्मण भले न कहें क्या राम को भगवान, लेकिन आगे चल के कहेंगे गे का माने भविष्य में भगवान को राम कहेंगे। भगवान ही आकर के राम राज्य स्थापन करती है क्या, आकर के माने प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेंगे तभी तो कहेंगे आए। राम राज्य स्थापन करते हैं अर्थात सूर्यवंशी राज्य स्थापन करते हैं। मुरली 10.6.74 पृष्ठ 1 मध्यांत। मनुष्य जब कोई मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, पिछाड़ी में उठाने के समय कहते हैं ना क्या राम नाम सत्य है। तो जब षष्ठी का अंत होगा तो सारी दुनिया के मुख से क्या बोलेगी राम नाम सत्य है, और बाकी सारी दुनिया एक शिव बाबा जो निराकार बन करके बाबा बनता है वो ही राम के द्वारा सत्य है, और बाकी सारी दुनिया झूठी साबित हो जाती, सबको भटकाए दिया झूठी दुनिया ने। पिछाड़ी में उठाने के समय कहते हैं ना राम नाम सत्य है, माला भी राम राम कह के सिमरते हैं, एक एक दाने को सिमरते जाएंगे और क्या बोलते जाएंगे राम राम राम। ये तो बुद्धिमान ब्रह्मा भक्त जानते ही है ये समय संगम का पिछाड़ी का समय है। अतः श्री राम मनुष्य सृष्टि के बीज बाप के संगम युगी शंकर के पाठ को समझे बिना सदगति अर्थात वर्षा नहीं प्राप्त हो सकता है, क्योंकि सदगति करने वाला सदगुरु कहा जाता है और सदगुरु बीच में दलाल साकार होना जरूरी है, बिना सदगुरु के सदगति नहीं मिल सकती। सदगति साकार शरीर से मिलती है या निराकार आत्मा को सदगति कहेंगे, निराकार आत्मा माने गति और साकार शरीर माने सदगति। मुरली में बोला भी है राम बाप को कहा जाता है, मुरली तारीख 6.9.70 पृष्ठ 3 मध्य, और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, हैं श्री कृष्ण बच्चा है मुरली 4.7.4.72 पृष्ठ 1 मध्य। इसीलिए तो मंदिरों में कृष्ण की बच्चे के रूप में पूजा होती है, बड़े के रूप में कोई भी कृष्ण की पूजा नहीं करता। साकार बाबा के समय का साक्षात्कार वाला स्वर्ग के चित्र, स्वर्ग के रचयिता और उनकी दैवी रचना वाला चित्र, जिसका क्रम इस प्रकार है त्रिमूर्ति शिव पहले, फिर श्री लक्ष्मी नारायण और उनके बच्चे नीचे राधा कृष्ण। उस चित्र को देखिए, इस चित्र में श्री लक्ष्मी नारायण को संगमयुगीय अलौकिक ज्ञान के प्रकाश में दिखाया गया है और श्री राधा श्री कृष्ण को उनके नीचे फूल पत्तों वाली साकार स्वर्गीय सृष्टि पर दिखाया गया है, ज्ञान प्रकाश की दुनिया नहीं दिखाई जैसे लक्ष्मी नारायण को दिखाई है उनके माँ बाप को। एक ही जन्म में डायरेक्ट नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी का गायन, ये प्रकाश में प्रकाश की दुनिया में खड़े हुए संगम युग लक्ष्मी नारायण के बारे में है, क्योंकि योग बल से इसी संगम युग के जन्म में अपनी काया को कंचन सतो प्रधान बनाए देते हैं। संगम में शरीर छोड़ने के बाद सतयुग में ब्रह्मा बाबा तो आगे, पहले प्रिंस कृष्ण बनेंगे बाद में श्री नारायण बनेंगे, डायरेक्ट नर से नारायण नहीं बनते। संगम श्री नारायण और श्री लक्ष्मी जिन्हें संगम में शंकर पार्वती कहा जाता है, मनुष्य सृष्टि के माँ बाप वो ही वास्तव में सत्य की प्रथम महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी श्री राधा के लौकिक साकार माता पिता हैं, जिनको भगवान भगवती का टाइटल मिलता है। चित्र में श्री कृष्ण व श्री राधा के चित्र के नीचे लिखा हुआ भी है विश्व महाराज कुमार श्री कृष्ण।
क्या
विश्व के महाराजन के बच्चे विश्व महाराज कुमारी श्री राधा। अब प्रश्न उठता है इनको महाराज कुमार या महाराज कुमारी का टाइटल किसने दिया? जरूर इनको टाइटल देने वाले स्वयं विश्व महाराजन और विश्व महारानी ही होना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव ब्रह्मा भक्तों को 21 जन्मों का 100% सुख शांति स्वास्थ्य पवित्रता का जो वर्षा देते हैं, उसमें से पहले जन्म का वर्षा इन संगमयुगी श्री लक्ष्मी नारायण का ही है। साथ साथ विश्व में उनकी राजधानी तो होगी ही। सभी ब्रह्मावत्स जानते हैं कि सचिव में ब्रह्मावत्सों के 8 जन्म और त्रेता में 12 जन्म होते हैं। सतयुग और त्रेता को मिलाकर कुल 20 जन्म हुए न कि 21 जन्म। अब प्रश्न उठता है कि वह 21 जन्म में पहला जन्म कौन सा है? अधिकांश ब्रह्मावत्सों का ये भ्रम है कि शिव बाबा तो ब्रह्मा द्वारा जो अभी झांसी ज्ञान रत्नों का खजाना प्राप्त कराते हैं वही पहले जन्म का वर्षा है। किंतु शिव भगवान वाच है अभी की कमाई वहाँ 21 जन्म चलती है। मुरली तारीख 26/2/75 पृष्ठ 1। तुम भविष्य 21 जन्म कब बीमार नहीं पड़ेंगे? मुरली तारीख 14/10/73 पृष्ठ 4। 21 जन्म पूरी राजाई इनको मिलती है, लक्ष्मी नारायण की तरफ इशारा किया, जो पहले पहले पास होते हैं। इनको मिलती है जो पहले पहले पास हो, माने सतयुग में जो राधा कृष्ण पहले पास होने वाले हुए या बाद में पास हुए? बाद में पास हुए। मुरली 9/11/72 प्रश्न 3 का आदि 21 जन्म तुम रंचक भी दुख नहीं पा सकते। मुरली तारीख 17/9/70 प्रश्न 3 मध्य तुम 21 जन्मों के लिए संपूर्ण पवित्र निर्विकारी रहेंगे। 1976 की वाणी है। तुम 21 जन्मों के लिए पवित्र संपूर्ण निर्विकारी रहेंगे। मुरली 22/2/76 प्रश्न 2 का मध्यादि ब्रह्मा तो माँ है, ये स्पष्ट किया जा चुका है, और वर्षा माँ से नहीं मिलता, बाप से मिलता है, बोला भी है ब्रह्मा बाप से, वर्षा बाप से ही मिलता है, मम्मा से नहीं, इनको भी मम्मा कहते हैं। मुरली तारीख 9/3/75 प्रश्न 1। आगे बोला राजाए भी बाप बगैर तो कोई दे न सके, ब्रह्मा के पास तो कुछ भी नहीं है, इनका चित्र भी रखने की दरकार नहीं। मुरली तारीख 27/2/75 प्रश्न 2 का आदि वास्तव में 1976 की बात, जब ज्ञान सूर्य शिव बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, साकार मनुष्य सृष्टि के बाप के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, तभी प्रैक्टिकल में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मा वत्सों को 21 जन्मों के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा प्राप्त होता है। तभी मने कभी प्राप्त होता है। अरे इतनी देर लगाते, 1936 में वर्षा प्राप्त करेगा, 2036 में प्राप्त करेगा। लो बाबा बोलते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, वो 10 वर्ष और आगे धकेल रहा है। ऐसे क्यों करता है? क्या बुद्धि में भरा हुआ है? कब तक भरा रहेगा ये? हाँ 28 तक, 2000 28 तक प्रैक्टिकल में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्रह्मा वत्सों को 21 जन्मों के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा प्राप्त होता है। कौन से ब्रह्मा वत्सों को है? वर्षा पाने वाले राजाई का वर्षा पाने वाले बच्चों की बात है या उनकी प्रजा की बात है? प्रजा थोड़ा ही राजाई पाएगी, प्रजा तो बाद में निकलती रहेगी। 9 लाख प्रजा निकलेगी कि नहीं? वो भी तो बीज रूप आत्मा है ना, वो बीज रूप आत्मा है इस संसार में कब तक अपना बड़े से बड़ा पार्ट बजाती रहेंगी है? त्रेता के अंत में भी प्रत्यक्ष होंगी प्रजा के रूप में और कलयुग के अंत तक भी प्रत्यक्ष होती रहेंगी। नंबरवार बीज रूप है ना, बीज आएगा तभी तो उसमें थे वो पत्ते निकलेंगे ना। हर एक के बीज में से 9 लाख पत्ते हैं, वो बीज हैं, तो पत्ते बाद में प्रत्यक्ष होंगे ना। हाँ, जब प्रत्यक्ष होंगे तब तो जोर शोर से संसार में सेवा भी करेंगे। षष्ठी चक्र में संगम का कुछ भाग कलयुग में दिखाया है और कुछ भाग सतयुग में। इसी प्रकार साकार बाबा के समय छपाए गए सीढ़ी के चित्र में सीढ़ी के नीचे दाईं तरफ जिधर कलयुग का अंत होता है वहां लिखा हुआ है पुरुषोत्तम संगम युग 40 वर्ष है। सीढ़ी के ऊपर जहां से सतयुग आरंभ होता है उसकी बाईं तरफ 7 देवी देवताएं दिखाए गए। तो बाबा ने 1976 में जिस कलयुग के विनाश और मानसिक स्वर्गीय सुख वाले सतयुग के आरंभ की घोषणा की थी वो संगम युग के कलयुग वाले भाग के अंत के संबंध में थी है, न आदि के संबंध में न मध्य के संबंध में। संगम युग का वो भाग जो सतयुग में पड़ता है उसका आरंभ 1976 के बाद हो जाता है। क्या सीढ़ी में ऊपर दिखाया गया ना, वो मानसिक सतयुग की अनुभूति ब्रह्मा वत्सों को 1977 से 1980 तक नंबरवार बड़े स्पष्ट रूप में होने लगेगी। उपरोक्त बातों को स्पष्ट करने का उद्देश्य ब्रह्मा बाबा दीदी जी दादी जी सहित किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी की निंदा करना नहीं है, नहीं हमारा उनसे कोई विरोध या नफरत है, बल बेहद की ड्रामा के नए पर्दे को उठाना हमारा लक्ष्य है। यहाँ ये प्रश्न उठ सकता है कि हमको साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति शंकर क्यों है? वह ड्रामा के नए पर्दे को अमुक आत्माओं द्वारा ही क्यों उठाया गया? गुलजार दादी, मोहिनी दादी, जगदीश भाई, सुंदरलाल जी, रमेश भाई जी, बड़े बड़े ब्रह्मा वत्सों द्वारा क्यों नहीं? ये तो वही बात हो गई कि ऋषि मुनि हजारों वर्षों तक तपटोर तपस्या करते रहे, उनको भगवान क्यों नहीं मिला? हम ब्रह्मा वत्सों को ही पहले क्यों नहीं मिले? शिव बाबा पहले पहले ब्रह्मा के तन में क्यों प्रवेश हुए? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विवेकानंद, शंकराचार्य तन में क्यों नहीं प्रवेश किया? जिस प्रकार ब्रह्मा के तन में प्रवेश होने की पृष्ठभूमि थी कि यही आत्मा सतयुग में प्रथम महाराज कुमार थे और आगे भी बनेगी, उसी प्रकार शंकर के पाठ की भी पृष्ठभूमि है। सूक्ष्म पतन का रहस्य जब गुलजार दाजी के द्वारा स्पष्ट किया गया उस समय कितनी उनकी कितनी कमाई थी, छोटी छोटी बच्चियां ध्यान में चली जाती थी। मम्मा जब ज्ञान में आई और मातेश्वरी बनी उस समय उनकी कितनी बड़ी आय थी। वास्तव में मम्मा ब्रह्मा बाबा से भी ज्ञान में तीखी गई थी, उनसे दुगुनी तिगुनी बड़ी आय के ब्रह्मा वत्स भी उनको मम्मा मम्मा कहते थे और उनकी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार रहते थे। कई पुरानी बहनों को दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त नहीं है, जबकि उनसे कम लौकिक अलौकिक वायु की बहनों को ये वरदान प्राप्त हुआ। ये दिव्य दृष्टि का वरदान 1976 के बाद प्राय समाप्त होने लगा। दिव्य बुद्धि द्वारा साक्षात्कार होने लगे, ऐसा ही यहाँ समझिए। इसके बाद 1984, 1987 एवं 2000 सदी की संगमयुगी ब्रह्मा के पर्दे, ड्रामा के पर्दे भी उठेंगे बीज रूप आत्माओं की दुनिया बीज धर्म। ध्यान रहे, रामबाण आश्रम वाले डॉक्टर क्षेमचंद्र और दिल्ली के वीरेंद्र कुमार जैन का शंकर के पाठ से कोई संबंध नहीं है। उपरोक्त बातों के स्पष्टीकरण के लिए और षष्ठी चक्र झाड़ सीढ़ी आदि चित्रों पर नए रहस्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए, परिचित होने के लिए निम्नलिखित स्थान पर पधारने का शुभ ईश्वरीय निमंत्रण दिया जाता है। पत्र व्यवहार भी कर सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार रवीश द्वारा रूहानी सच्ची गीता पाठशाला, F61 ग्रीन पार्क नई दिल्ली 11116। मिलने का समय प्रातः एवं सायंकाल 6 बजे से 8:30 बजे तक, उससे पहले नहीं आना। रवि जी नहीं मिलेंगे, वो राष्ट्रपति भवन में काम करते हैं, वित्त मंत्रालय में। साधारण आदमी नहीं है, अब तो रख दो इसे।